नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने वर्ष 2024 के लिए नीति लक्ष्य निर्धारित करने के वास्ते एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक की। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करने और देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली उपलब्धियों और सफलताओं की प्रशंसा की। सरकारी मीडिया ने बुधवार को ये जानकारी दी। विशेषज्ञों ने कहा कि सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की साल के अंत में होने वाली पूर्ण बैठक के दौरान उत्तर कोरिया संभवतः हथियारों के विकास में अपनी प्रगति का प्रचार करेगा, क्योंकि देश में लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और महामारी से संबंधित आर्थिक कठिनाइयों के बीच आर्थिक उपलब्धियों का अभाव है। कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार मंगलवार को बैठक की शुरुआत में किम ने वर्ष 2023 को नाम और वास्तविकता दोनों में शानदार परिवर्तन और बदलाव का वर्ष बताया। KCNA ने कहा कि नवंबर में अपने पहले सैन्य जासूसी उपग्रह के प्रक्षेपण और अन्य परीक्षित हथियारों की शुरुआत की बदौलत उत्तर कोरिया ने इस साल अपनी रक्षा क्षमताओं में तेजी से प्रगति की है। KCNA ने कहा कि उत्तर कोरिया ने भी इस साल फसल के अच्छे उत्पादन की सूचना दी, क्योंकि देश ने समय से पहले नई सिंचाई सुविधाओं का निर्माण पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी राज्यों क्वींसलैंड और विक्टोरिया में खराब मौसम के कारण कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि मंगलवार को दक्षिण क्वींसलैंड तट के पास मोरेटन खाड़ी में खराब मौसम के कारण एक नाव के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस नाव पर 11 लोग सवार थे। हादसे में घायल हुए 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट शहर में सोमवार को रात पेड़ गिरने से 59 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं पड़ोसी शहर ब्रिस्बेन में मंगलवार को 9 वर्षीय लड़की का शव बरसाती नाले में मिला। वो कुछ घंटों पहले लापता हो गई थी। पुलिस ने बताया कि जिम्पी शहर की मैरी नदी में 2 महिलाओं के शव पाए गए। वो उन 3 महिलाओं में से थी जो मंगलवार को एक बरसाती नाले में बहकर नदी में चली गई। एक अन्य महिला खुद को बचाने में कामयाब रही। क्वींसलैंड पुलिस आयुक्त कैटरीना कैरोल ने इन त्रासदियों के लिए असाधारण रूप से खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया। इजरायली सुरक्षा बलों ने मंगलवार को फलस्तीन के भीड़भाड़ वाले इलाकों में बमबारी करने और इलाकों से इलाका खाली करने के आदेश के बाद मध्य गाजा के शहरी शरणार्थी शिविरों में अपने जमीनी हमले का विस्तार किया। गाजा के मुख्य दूरसंचार प्रदाता ने इन इलाकों में सेवाओं में पूर्ण रुकावट की घोषणा की। संभावित नए युद्ध क्षेत्र का खुलना इंगित करता है कि आगे की ये राह विनाशकारी और लंबी है, क्योंकि दक्षिणी इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद इसराइल ने हमास को कुचलने का संकल्प लिया है। कई हफ्तों से इजरायली सेना उत्तरी गाजा और दक्षिणी शहर खान यूनिस में भारी लड़ाई में जुटी हुई है, जिसने फिलिस्तीनियों को शरण लेने के लिए क्षेत्र के छोटे क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है। अमेरिका ने कहा कि इसराइल और रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के साथ बैठक कर रहे थे। संघर्ष विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव और हताहत होने वाले नागरिकों की संख्या में कमी लाने के अमेरिकी आह्वान के बावजूद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि लड़ाई खत्म होने के करीब नहीं है। नेतन्याहू ने कहा, हमास के आतंकवादियों से हमारा यही कहना है कि हम तुम्हारे पास पहुंचेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। नीदरलैंड के पूर्व उप प्रधानमंत्री सिगरिट काक को युद्धग्रस्त गाजा में मानवीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र समन्वयक नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने मंगलवार को यह घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस की घोषणा सुरक्षा परिषद द्वारा शुक्रवार को एक प्रस्ताव को अपनाने के बाद की गई, जिसमें उनसे गाजा के लिए वरिष्ठ मानवीय और पुनर्निर्माण समन्वयक शीघ्र नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था। गाजा में 20 लाख से अधिक लोगों को भोजन, पानी और दवा की सख्त जरूरत है। गुतारेस ने कहा कि काग को राजनीति, मानवीय एवं विकास मामलों के साथ साथ कूटनीति में भी काफी अनुभव है। काग अरबी सहित 5 भाषाओं की जानकार हैं। वो अगले वर्ष 8 जनवरी से पदभार ग्रहण कर सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि वो गाजा के लिए राहत खेपों के पहुंचने में मदद करेंगी। गुतारेस ने कहा कि काग उन देशों के माध्यम से सहायता वितरण में तेजी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का तंत्र भी स्थापित करेगी जो संघर्ष में शामिल नहीं है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।